आप हैं SBS हिंदी के साथ।
SBS हिंदी पर गौरव वैष्णव के साथ सुनिए शाम 5 बजे तक के मुख्य समाचार। अल्पकालिक एज्ड केयर कर्मचारियों को भी अब मिल सकेगी पेड पेंडेमिक लीव। भारत में ऑक्सफोर्ड में बने कोरोना टीके के आखिरी मानव परीक्षण की तैयारी पूरी और सुपर नेट बॉल शुरू होने से पहले बदले गए कुछ नियम। और अब समाचार विस्तार से। विक्टोरिया सरकार ने एज्ड केयर में रहने वाले लोगों को कोरोना से संक्रमित होने पर अस्पताल में रखने की योजना बनाई है। पिछले एक दिन में 384 नए मामले और 6 मौतों के बाद ये फैसला सामने आया है। इनमें से 4 मौत एज्ड केयर केंद्रों में हुई है। यही नहीं, राज्य में कुल सक्रिय मामलों में से 700 से ज़्यादा एज्ड केयर से जुड़े हैं। 150 से ज़्यादा निजी एज्ड केयर में रहने वाले संक्रमित लोगों को पहले ही अस्पताल पहुँचाया जा चुका है और करीब 50 और लोगों को आने वाले दिनों में अस्पताल ले जाने की योजना है। अस्पतालों में बेड, स्टाफ और दूसरे संसाधनों की व्यवस्था करने के चलते राज्य में गैर जरूरी और श्रेणी 2 की सर्जरी को रोक दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री जेनी मिकाकोस ने कहा है कि पिछला हफ्ता काफी तनावपूर्ण था।
From last week, for example, we have had a very distressing situation at St. Basil's in Faulkner. This is a facility that is very close, of course, to many members of the Greek community, and I know they have been particularly distressed to see the rising toll of deaths at that facility.
एज्ड केयर केंद्रों में COVID-19 के बढ़ते संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार विक्टोरिया को एक और संसाधनों की मदद करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ग्रेग हंट ने घोषणा की है कि विक्टोरिया में ऑस्ट्रेलियन मेडिकल असिस्टेंट टीम को तैनात किया जाएगा। इसमें साथ ही 1400 से ज़्यादा सुरक्षा बलों के सदस्य शामिल होंगे। एज्ड केयर केंद्रों में कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए दूसरे राज्यों और ख़ासतौर पर साउथ ऑस्ट्रेलिया से नर्सों को तैनात किया जाएगा। राष्ट्रीय भंडार से 5 मिलियन मास्क की एक और खेप वितरित की जाएगी और प्रशासन विक्टोरिया के नए एज्ड केयर रिस्पॉन्स सेंटर को सहायता देना जारी रखेगा। श्री हंट ने एज्ड केयर केंद्रों के कर्मचारियों का पक्ष लेते हुए कहा कि वो इस संकट से अच्छी तरह निपट रहे हैं। उन्होंने खुलासा किया कि उनके पिता भी विक्टोरिया के एज्ड केयर सेंटर्स में रहते थे।
My father lived in one and we knew that that meant he was in the latest stages of his life. I cannot imagine better care that my family and my father could have got. And I speak, I think, for hundreds of thousands of families around the country. So yes, and the idea that our carers, that our nurses are not providing that care, I think is a dangerous statement to make. They are wonderful human beings and I won't hear a word against them.
खबर न्यू साउथ वेल्स से, जहां पिछले एक दिन में कोरोना संक्रमण के 14 नए मामले सामने आए हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने 2 नई जगहों पर मामलों की पहचान की है। इनमें से एक है माउंट प्रिचार्ड का माउंटीज और प्रिचार्ड्स होटल। ये मामले पिछले हफ्ते गुरुवार से शनिवार तक के हैं। यहाँ प्रभावितों को एकांतवास में जाने और टेस्ट कराने की सलाह दी गई है। विभाग ने उन लोगों से भी एकांतवास में जाने और टेस्ट कराने की अपील की है जो कि शनिवार 25 जुलाई को मेलबर्न से सिडनी आने वाली एक फ्लाइट JQ506 में एक कोरोना संक्रमित शख्स के निकट संपर्क में थे। ये नज़दीकी लोग फ्लाइट की 10, 11, 12, 13 और 14 नंबर सीट वाले लोग थे। राज्य के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कैरी चेंट ने बताया कि ज़्यादातर नए मामले पहले से चिन्हित जगहों से जुड़े हैं।
6 are linked to the funeral gatherings cluster, 4 are associated with the Thai Rock Wetherill Park, and 1 case is associated with the Thai Rock restaurant at Potts Point. 1 case is a staff member at the Apollo restaurant in Potts Point. Additionally, 1 case was acquired in Victoria, and is currently in isolation, and 1 is a returned traveller in hotel quarantine.
New South Wales Supreme Court द्वारा अस्वीकृत किए जाने के बाद पुलिस ने Black Lives Matter प्रदर्शन में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 5 पर सार्वजनिक स्वास्थ्य आदेशों को तोड़ने के लिए $1,000 का जुर्माना लगाया गया है, जबकि 1 पर आपत्तिजनक भाषा बोलने के लिए आपराधिक धारा लगाई गई है। पुलिस का कहना है कि इस रैली में सैकड़ों दूसरे लोग भी शामिल हुए, लेकिन उन पर जुर्माना नहीं लगाया गया। पुलिस के मुताबिक जब उन्हें इस जगह से जाने के लिए कहा गया तो वो मान गए। सहायक पुलिस आयुक्त माइकल विलिंग ने कहा कि पुलिस लोगों के विरोध के अधिकार की सराहना करती है।
We are not anti the right to protest. This is about public safety. At the end of the day, we are in the middle of a pandemic. The Supreme Court judge himself described the current situation in New South Wales as being on a knife's edge.
फेयर वर्क कमीशन के फैसले के बाद अल्पकालिक एज्ड केयर कर्मचारी भी कल यानी बुधवार से पेड महामारी अवकाश के लिए पात्र होंगे। ये प्रक्रिया 3 महीने तक लागू रहेगी। कमीशन ने कहा है कि यह निर्णय एज्ड केयर कर्मचारियों के जरिए कोविड 19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लिया गया है, जो कि वित्तीय कारणों से काम पर जाना जारी रख सकते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलियन काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन ने केंद्र सरकार से यह सुनिश्चित करने की मांग की है कि हर कर्मचारी को पेड लीव की सुविधा मिले। और अब खबरें भारत से। कोविड 19 के इलाज के लिए ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित टीके के तीसरे और अंतिम मानव परीक्षण के लिए भारत में 5 जगहों में तैयारी पूरी कर ली गई है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव रेणु स्वरूप ने सोमवार को ये जानकारी दी। ऑक्सफोर्ड और इसके साझेदार एस्ट्राजेनेका ने टीके की सफलता के बाद विश्व के सबसे बड़े टीका निर्माता द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को इसके उत्पादन के लिए चुना है। सुश्री स्वरूप ने कहा कि ये एक आवश्यक कदम है, क्योंकि भारतीयों को टीका देने से पहले देश के भीतर आंकड़े उपलब्ध होना आवश्यक है। मंगलवार को भारतीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 47,703 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14,83,156 पर पहुंच गई है। वहीं इस दौरान 654 लोगों की मौत हुई है और कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 33,425 हो चुकी है। ये लगातार चौथा दिन है जबकि देश में कोविड 19 के मामले 45,000 से 50,000 के बीच आए हैं। मंगलवार को रिकवरी रेट में एक बार फिर से मामूली सुधार देखा गया है, अब यह बढ़कर 64.23% हो चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण का रिकवरी रेट 88% पहुँच गया है। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली में केवल 9% ही एक्टिव मामले हैं। उन्होंने इसके लिए दिल्लीवासियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में दिल्ली के कोरोना मॉडल की बात हो रही है।
एक तरफ जहां देश भर में दुनिया भर में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं पे दिल्ली में कोरोना के केसेस में लगातार गिरावट आ रही है। हमारा रिकवरी रेट, मतलब कि अगर 100 लोग बीमार हुए तो कितने लोग ठीक हो गए, आज 88% लोग ठीक हो गए हैं। 100 लोग अगर बीमार हुए दिल्ली में तो उसमें 88 लोग ठीक हो चुके हैं, और अब जो बीमार लोग बचे हैं केवल 9% लोग बीमार बचे हैं।
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में वकील ईश्करण भंडारी ने कहा है कि यह मामला सीबीआई को दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस ने बिना तफ्तीश किए पहले ही इसे आत्महत्या करार दे दिया। वो कहते हैं कि कॉल डिटेल्स और बाकी आंकड़े उनकी मौत के इतने समय बाद खंगाले जा रहे हैं।
Some improvement has happened that statements are being taken, and I say it's a good thing that at least statements and documents are being created. This should have been done very early, but it's being done now, and discrepancies are coming out in it. One would ideally hope Mumbai Police does a very fair investigation and not an investigation where they have a conclusion predetermined, जिसको हम बोलते हैं reverse engineering. You come to a conclusion, it's suicide, and then you do all investigation to come to meet that conclusion. So I hope they are not doing that.
और अब डॉलर का हाल। आज यानी मंगलवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 53.42 रुपये और अमेरिकी डॉलर की तुलना में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 71 सेंट्स थी। और अब खबरें खेल के मैदान से। वेस्टइंडीज़ और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के चौथे दिन का खेल बारिश की भेंट चढ़ गया। चौथे दिन एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी। आपको बता दें कि इस मैच में इंग्लैंड एक बार फिर मजबूत स्थिति में है। इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 369 रन बनाए थे, जबकि वेस्टइंडीज़ की टीम 197 रनों पर ही आउट हो गई। इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी 2 विकेट के नुकसान पर 226 रनों पर घोषित कर दी थी। अपनी दूसरी पारी में वेस्टइंडीज़ 2 विकेट खो चुका है, जबकि उसके महज 10 रन ही बने हैं। वेस्टइंडीज़ के सामने जीत के लिए 389 रनों का लक्ष्य है। शनिवार 1 अगस्त से नेटबॉल प्रतियोगिता शुरू होने से पहले खिलाड़ियों की भलाई के लिए कई नियमों में बदलाव किए गए हैं। सुपर नेट बॉल आयोग ने चिकित्सकों से मशवरे के बाद अंतिम समय में कुछ परिवर्तन किए हैं, जिनमें 2021 तक अतिरिक्त समय स्थगित करना शामिल है। बोनस पॉइंट सिस्टम को भी छोड़ दिया गया है। सनशाइन कोस्ट के कप्तान लॉरा लैंगमैन ने नियमों में इन परिवर्तनों का स्वागत किया है।
I think it's part and parcel of the season that's going to be COVID related. We are always adapting as we go. I think it makes sense what they've done, extended the squads due to the condensing of the season just to manage load a bit better. I think at the end of the day, player welfare, there's been a lot of thought around it.
और अब डालते हैं नजर कल यानी बुधवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। शुरुआत पर्थ से। पर्थ में आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान 20 डिग्री, न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। एडिलेड के आसमान में भी बादलों की आवाजाही रह सकती है। अधिकतम तापमान 16 डिग्री, न्यूनतम 5 डिग्री सेल्सियस। मेलबर्न में सुबह के कोहरे के बाद आसमान में बादलों की आवाजाही रह सकती है। अधिकतम तापमान 16 डिग्री, न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस। देश की राजधानी कैनबरा में भी कमोबेश इसी तरह के हालात रहेंगे। यहाँ भी सुबह कोहरा लग सकता है। अधिकतम तापमान 15 डिग्री, न्यूनतम 3 डिग्री सेल्सियस। सिडनी में भी आंशिक तौर पर बादल रह सकते हैं। अधिकतम तापमान 19 डिग्री, न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। ब्रिस्बेन में धूप की संभावना है। अधिकतम तापमान 24 डिग्री, न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। डार्विन में ज़्यादातर धूप रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री, न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। भारत की राजधानी नई दिल्ली में सुबह के वक्त आंधी के आसार हैं। अधिकतम तापमान 34 डिग्री, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। समाचारों में आज इतना ही।
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें। SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।